श्री प्रभुपाद की जय। राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरै नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरा भवति नैष्टिकी। आज हम श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद इनका अध्याय है 19वां। शीर्षक है राजा याति को मुक्ति लाभ। श्लोक संख्या नंबर 29। कृपया करके मेरे पीछे इन श्लोकों को उच्चारण करिएगा। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे सर्वभूतादिवासाय शांताय वृते नमस्तुभ्यं भगवते नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे वासुदेवाय वेदसे सर्वभूताधिवासाय सर्वभूताधिवासाय शांताय बृहते नमः शांताय बृहते नमः। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे सर्वभूतादिवासाय शांताय बृहते नमः। शब्दार्थ इस प्रकार है। नमः नमस्कार करती हूँ तुभ्यं तुमको भगवते भगवान वासुदेवाय वासुदेव को वेदसे सृष्टा सर्वभूताधावासाय सर्वव्यापी प्रत्येक जीव के हृदय में तथा प्रत्येक अणु में भी शांताय शांत मनो पूर्णतया निष्कृष्ट हो बृहते सबों में विशालतम नमः नमस्कार करती हूँ। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की हे भगवान वासुदेव, आप समस्त विराट जगत के सृष्टा हैं। आप सबों के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं और सूक्ष्मतर होते हुए भी बहुतम से बहुत्तर है तथा सर्वव्यापी है। आप परम शांत लगते हैं, मानो आपको कुछ करना धरना न हो, लेकिन ऐसे आपको सर्वव्यापी स्वभाव एवं सर्व ऐश्वर्य से पूर्ण होने के कारण अथवा मैं आपको साधर नमस्कार करती हूँ। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, यहाँ पर वर्णन किया गया है कि किस तरह अपने महान पति के अनुग्रह से देवयानी स्वरूप सिद्ध बन सकी। ऐसे साक्षात्कार का वर्णन करना भक्ति संपन्न करने की दूसरी विधि है। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवना अर्चना वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान विष्णु के नाम रूप गुण सच समान तथा लीलाओं के सुनना और उनका कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, भगवान की पूजा करना, प्रार्थना करना, उनका दास बनना, उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ मित्र बनाना तथा उन्हें सर्वव्यापी अर्पित करना, यह शुद्ध भक्ति की यह नौ विधा है। भागवतम के सातवें स्कंद के पांचवें अध्याय के 23वें श्लोक में इसमें यह श्रवण कीर्तन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अपने पति से भगवान वासुदेव की महानता के विषय में श्रवण करके देवयानी अस्वस्थ हो गई और उसने भगवान के चरण कमलों में अपने को समर्पित कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही ज्ञान है बहुना जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। भगवान वासुदेव की शरणागति जन्म जन्मांतरों तक उनके विषय में श्रवण करने का परिणाम होती है। जो ही मनुष्य भगवान वासुदेव की शरण में चला जाता है तो ही वह मुक्त हो जाता है। देवयानी अपने महान पति महाराज जयाति की संगति से शुद्ध हो गई। उसने भक्ति योग ग्रहण किया और इस तरह मोक्ष को प्राप्त हुई। इस तरह श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत राजा ययाति को मुक्ति लाभ शीर्षक 19वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। होम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप गदामयम् ददापि स्वपदांतिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम साद्वदूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुधे देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पत्रुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो यहाँ पर आज के इन श्लोकों में, जहाँ पर इस 19वें अध्याय के अंतिम श्लोक में देवयानी अपने आत्म साक्षात्कार को प्रकट करते हुए इन शब्द को कहती हैं, तो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार देवयानी भी राजा ययाति महाराज की तरह उन्हें भी विषयों के प्रति विरक्ति आ गई। तो बताया गया है नमस्तुभ्यं भगवते, सबसे पहले देवयानी भगवान की शरणागति को ग्रहण करते हुए क्या कहती है, वासुदेवाय वेदस्य, उस वासुदेव, उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो कि वेदस्य, यानी कि जिन्होंने सृष्टि की रचना की, तो एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही इस सृष्टि के रचयिता है। इसलिए कहा गया है, जैसे शास्त्रों में बताया जाता है कि कृष्ण का विस्तार हुए बलराम जी, और बलराम जी से शंकरसन वासुदेव प्रथम अनिरुद्ध उत्पन्न हुए, और फिर शंकरसन से वापस चतुर्व्यूह उत्पन्न हुए, शंकरसन वासुदेव प्रथम अनिरुद्ध, ऐसे कई चतुर्व्यूह हुए। उसमें से जो दूसरे वाले जो शंकरसन थे, उनमें से महाविष्णु का प्राकट्य हुआ, यानी कि कारणोदक्षाय विष्णु, और उन्होंने जब अपना श्वास छोड़ा, तो जिस प्रकार हमारे शरीर में रोम है, उस प्रकार भगवान के शरीर से, जय श्री श्री राधा की, हरे भगवान जगन्नाथ बलदेव, उसी प्रकार भगवान के शरीर से अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, और इस ब्रह्मांड में स्वयं कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश किए, और उनके उसी ब्रह्मांड के अंदर उनके गर्भ से ब्रह्मा जी, यानी कि कमल प्रकट हुए, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, और फिर ब्रह्मा जी ने पूरे सृष्टि की रचना की। इस प्रकार जो सृष्टि के जो मूल जो कारण है, तो वो है वासुदेव। इसलिए यहां पर देवयानी बता रही है कि किस प्रकार मैं उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करती हूं, किस लिए, क्योंकि वेद ऐसा, क्योंकि वो स्वयं पूरे सृष्टि के रचयिता है। फिर आगे कहते हैं सर्वभूतादि वासाय, सर्वभूतादि वासाय यानी कि वो समस्त जीवों के अंदर व्याप है, तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो कि एक छोटे से छोटे अणु के अंदर भी उपस्थित है। जैसे आत्मा का साइज बताया जाता है कि आत्मा का माप जो है, वैसे उन्हें तो माप तो नहीं सकते, लेकिन तत्पर भी उपनिषदों में इसका वर्णन किया गया है कि बाल के अग्र भाग को अगर 10,000वां टुकड़ा करते हैं, तो उतना छोटा सा है आत्मा, और उस आत्मा के हृदय में परमात्मा निवास करते हैं। तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि प्रकार वो भगवान इतने छोटे छोटे, उनसे छोटा कोई नहीं है, और वैसे सर्वव्यापी है। इसलिए ब्रह्मा जी भी अपने प्रार्थना में कहते हैं अंडांतरस्तु परमाणु क्षीयांतरस्तम, वो भगवान वही परमात्मा के रूप में हर एक अणु में उपस्थित है। जब ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की, तो सृष्टि की रचना के पश्चात उन्होंने देखा कि कोई भी वस्तु अपने अपने धर्मों का पालन नहीं कर रहा है। जल को बनाए, अग्नि को बनाया, वायु को बनाया, मगर कोई भी जल के अंदर तरलता की भावना नहीं है, अग्नि के अंदर ताप देने की या प्रकाश देने की जो भावना नहीं है, तो वैसे ब्रह्मा तक चकित हो गए कि सारे जीव को मैंने यथारूप से बनाया, जैसे परमात्मा का आदेश, जैसे गर्भोदक्षा विष्णु ने मुझे आदेश दिया, मगर कोई भी कार्यशील नहीं था। तब उन्होंने जब प्रार्थना किया, तब गर्भोदक्षा विष्णु शिरोदक्षा विष्णु के रूप में आकर सभी अणु के अंदर जब प्रवेश किए, तब सारे वस्तु अपने अपने कार्यशील में लग गए। तब जल के अंदर सरलता की भावना आई, तब मनुष्य के अंदर चल हिलने डुलने की जो चेतना प्रकट हुई, जैसे कि मानो फैन वगैरह सब है, लेकिन जब तक बटन या स्विच ऑन नहीं करेंगे तब तक वो चलेगा नहीं। ठीक इसी तरह ब्रह्मा जी ने पूरे सृष्टि की रचना की, मगर स्विच ऑफ कर, क्योंकि उनको यह नहीं पता था कि स्विच ऑन कैसे किया जाए। तो वही परमात्मा सबके हृदय में प्रवेश किए शिरोदक्षा विष्णु के रूप में, और सर्वव्यापी उपस्थित है वैसे परमात्मा। इसलिए उनको दूसरे शब्द में कहते वासुदेवाय। तो वासुदेवाय का दूसरा भी अर्थ यह है, एक तो अर्थ है कि वसुदेव का पुत्र वासुदेव, और दूसरा अर्थ यह है कि जो सर्वव्यापी है, समस्त जगह पर उपस्थित है, वासुदेवाय। फिर आगे कहते हैं कि आप कौन हो जो कि सर्वभूता आदि वासाय, जो कि आप सभी जगह पर उपस्थित हो। जैसे कि एक समय की बात थी कि एक बार एक गुरु ने अपने सारे विद्यार्थी को ये शिक्षा दिया कि भगवान समस्त जगह पर उपस्थित है, और सभी को भगवान के गुणों के विषय में शिक्षा देने के पश्चात उन्होंने जब विद्यार्थी को जब छोड़ने का जब समय आया, तो उन्होंने विद्यार्थी को परीक्षा लेने के विषय में सोचा। तो उन्होंने सारे विद्यार्थी को ये आदेश दिया कि ये मेरा आदेश है कि सभी लोग आपके हाथ में एक एक आम दिया जाएगा, और इस आम को छुप कर खाइएगा, कोई देखना नहीं चाहिए। तो सबके हाथ में दे दिया, तो सभी लोग कोई पेड़ के ऊपर छुप के खा लिए, कोई गुफे के अंदर खा लिया, कोई अंधेरे में खा लिया। और फिर जब वापस आए तो गुरुजी ने पूछा कि सभी लोग ने मेरे आदेश का पालन किया, तो उसमें से एक विद्यार्थी बड़ा दुखी था, वो सोचा कि मैं अपनी परीक्षा में फेल हो गया, और वो आकर कहने लगा कि गुरुजी मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, क्या मैं कहीं पर भी इस फल को छुप कर खा नहीं पाया। बोले क्यों नहीं खा पाया? बोले कि मैं कहां छुप कर खाऊं, वो तो भगवान परमात्मा के रूप में सभी जगह उपस्थित है, मैं कैसे खाऊं इसे। तब गुरुजी ने कहा सब फेल तू पास। तो वैसे जो व्यक्ति जब अपने इस विचार में आता है कि भगवान सभी जगह पर उपस्थित है, तो वैसा व्यक्ति सभी दिशाओं पर भगवान का दर्शन कर सकता है। प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचने ना संत सदैव हृदयेषु विलोक्यन्ति यमश्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम। तो वैसे जो भगवान जो सभी दिशाओं पर उपस्थित है, उस प्रकार यहाँ पर देवयानी दर्शन करते हुए आगे कहती है कि आप कौन हो शांताय। शांताय यानी कि वो जो किसी के स्वतंत्रता में दखल अंदर उन पर कोई बाधा नहीं देते। तो जीव क्या है? जीव स्वतंत्र है। तो जीव स्वतंत्र होने के नाते जीव के स्वतंत्रता में भगवान कभी बाधा नहीं देते। परमात्मा क्या है, किस प्रकार रहते हैं? न्यूट्रल। तो इसलिए हम देखते हैं कि भगवद गीता कृष्ण ने अर्जुन को पूरी भगवत गीता सुनाए, और पूरी भगवत गीता सुनाने के बाद कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यत इच्छसि तथा कुरु, अब तुम्हें जैसा करना है तुम करो। मैंने तुम्हें सही और गलत का रास्ता बता दिया। तो वैसे यहां पर देवयानी भी कह रही है कि वैसा ही गुण आपके अंदर है कि आप किसी के स्वतंत्रता में कभी बाधा नहीं देते। सारे जीव को स्वतंत्रता दी है, जिस स्वतंत्रता से वो अपनी स्व इच्छा से सही और गलत मार्ग को चुन सकता है। फिर आगे कहते ब्रीहते, तो आप कौन हो? तो कहते हैं कि आप सबसे महान हो। ब्रीहते यानी कि आपसे बढ़कर कोई नहीं है। जैसे रामायण में जहां पर वर्णन आता है कि जब प्रभु रामचंद्र जी ने जब आक्रमण के लिए जब रावण को संदेश भेजा, तो रावण ने सोचा मैं और भी लोगों से जरा मदद लूं। तो रावण सुतल लोक चला गया था बलि महाराज से मदद लेने के लिए, और वहां पर वही रावण जब उस बलि महाराज के महल के अंदर जाने के जब प्रयास कर रहा था, उसी समय वहां पर एक पहरेदार, वो कौन था, स्वयं वामन देव खड़े हैं, तो उसका सामना करके तो नहीं जा सकते। तो उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा मक्खी का रूप लिया और अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया, और जैसे ही छोटा मक्खी का रूप लेकर अंदर घुसने को देखा, तो भगवान वामन देव ने अपने चरण कमल को उनके ऊपर रख दिया और वो बेचारा अंदर छटपटाने लग गया। खूब प्रयास कर रहा था बाहर निकलने, लेकिन नहीं हो रहा था। जब भगवान वामन देव सोचे कि चलो इस पर मैं अपनी अनुकंपा बरसाता हूं, तो उन्होंने उन पर दया कर उनको छोड़ दिया। फिर यह मक्खी सीधे अंदर, जो कि रावण मक्खी रूप में सीधे अंदर जब गए, तो बलि महाराज के सामने आकर वो कहने लगे कि मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। तो बलि महाराज ने कहा क्या सहायता चाहिए? तो कहने लगे मृत्यु लोग में राम करके कोई व्यक्ति आया हुआ है, तो ये राम करके मनुष्य ऐसा है कि ये मुझ पर आक्रमण करने का ललकारा हुआ है, इसलिए हमें इसको बराबर सबक सिखाना है, तो मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। तो बलि महाराज कहने लगे राम, प्रभु राम के साथ तुम झगड़ा युद्ध करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा मैं आपको एक बात बताता हूं, इधर आइए, और उनको लेकर गए सीधे खिड़की के बाहर। तो महल के खिड़की के बाहर उन्होंने दिखा तो बड़ा सोने का ढेला था। तो बोला ये क्या है, दिख रहा है? तो बोले ये तो सोने का पर्वत दिख रहा है। बोला जाओ इसे जाकर उठा लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन इस मेरे साथ लिंक क्या है? नहीं तुम उठाओ तो सही। तो गए उन्होंने, और वो सोने का ढेला जो था उसे उठाने का भरपूर प्रयास किया, मगर उठ नहीं पाया। वापस आया, रावण कहने लगे क्या मजाक लगा रखा है, क्या हो रहा है? तो बलि महाराज कहने लगे तुम्हें पता है ये क्या है? बोले नहीं। तो ये कहने लगे मेरे पूर्वज हिरण्यकशिपु वो जब अपने जमाने में थे, तो उस समय वो अपने कान में कमंडल जो होता था वो इतना भारी हुआ करता था, और भगवान नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो नरसिंह भगवान आए और उसी हिरण्यकशिपु उन्होंने चीरड़ा, और उसमें से एक कान की बाली यहां की गिरी है, और वो हिरण्यकशिपु के कान के बाली को तुम उठा नहीं पा रहे हो। तो उसे मारने वाला नरसिंह भगवान अभी प्रभु राम के रूप में प्रकट हुए, तो तुम उसके साथ क्यों युद्ध कर रहे हो? विचार छोड़ दो। मगर रावण बड़ा मूर्ख था, क्योंकि उनका अंत निश्चित था। तो वैसे भगवान जो कि सर्वश्रेष्ठ है, ब्रियते, उससे बढ़कर कोई नहीं है। इस तरह यहां पर देवयानी कहती है कि मेरे अंदर भी ये सारे विषयों के प्रति, देवयानी इस प्रकार अपने विषयों के प्रति विरक्ति प्रकट करते हुए वो बता रही है कि किस प्रकार भक्ति योग के सहारे देवयानी ने अपने जीवन को सफल किया। तो श्रील प्रभुपाद इनके तात्पर्य में बताते हैं कि क्योंकि देवयानी ने अपने जीवन में भक्ति योग को अपनाया, और वो क्या, क्योंकि देवयानी ने ययाति महाराज के द्वारा उन्होंने भगवान के यशोगान को सुने, और केवल वो श्रवण करने मात्र से देवयानी का चित्त जो था वो शुद्ध हो गया। तो ये भक्ति का एक अंग है, जिस भक्ति के अंग से व्यक्ति अपने आप को परम पवित्र कर सकता है। इसलिए अगर कोई भक्ति योग को छोड़कर कोई अन्य मार्ग कितना भी अपनाए, कितना भी जटिल तपस्या क्यों ना करे, मगर वह अपने जीवन में सफल नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मूल जो रस है वह है भक्ति योग, उससे वो वंचित है। जैसे विश्वामित्र मुनि ने अपने जीवन में 10,000 वर्ष उन्होंने तपस्या किया, और वो जब तपस्या किए तो यहां पर इंद्र को बड़ा घबराहट हो गया, तो इंद्र ने सीधे उनके पास मेनका को भेज दिया। अब जब मेनका आई तो मेनका के पायल का आवाज ध्वनि सुनना ही पड़ा। तो यहां पर विश्वामित्र मुनि 10,000 वर्ष तक आंखें बंद कर बसिया कर रहे, लेकिन जब पायल की आवाज आई तो उन्हें पता लग गया कि कोई अप्सरा आई है। अब इतना भी उसे यह भी पता नहीं, ऐसा भी नहीं लगा कि उनको कोई मंदिर का घंटी बज रहा है। उस समय भी उनको वहां पर एक अप्सरा का स्मरण हो गया, और उस समय विश्वामित्र मुनि अपनी तपस्या से गिर पड़े, और फिर उन्होंने वापस पछतावा करते हुए वापस तपस्या में लगे, तो फिर से इंद्र ने दूसरे अप्सरा को भेजा। अब रंभा आई थी, अब जब रंभा आई तो विश्वामित्र समझ गए कि यह वही इंद्र का ही काम है, और बड़ा क्रोधित हो गया इंद्र के प्रति, और इंद्र के क्रोध को प्रकट करते हुए उन्होंने अपनी दृष्टि खोली, जिस दृष्टि से उन्होंने ज्वाला को प्रकट किया, जिस ज्वाला से उन्होंने रंभा को जला दिया। तो फिर विश्वामित्र अपने आप को सर पटक पटकते हुए वो कहने लगे कि हाय हाय, मैं फिर गिर पड़ा। पहले गिर पड़ा काम के कारण, दूसरी बार गिर पड़ा क्रोध के कारण। तो वैसा व्यक्ति जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य से पीड़ित है, वो व्यक्ति तब तक उससे छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वो भक्ति योग को सीधी तरीके से अपनाता नहीं। जैसे नवम स्कंद में जहां पर वर्णन आता है सौबर्य मुनि का, सौबर्य मुनि जो थे ये इतने बड़े तपस्वी थे, इन्होंने जल के भीतर उन्होंने कई हजार वर्ष तक उन्होंने 10,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया। बताया जाता है यमुनार अंतर जले मग्ने तपस्य मीन तप मान परम तप निवृत्त मीन राजस्य दृष्ट्वा मैथुन धर्मिना। तो उन्होंने जल के भीतर ऐसी भयंकर तपस्या की कि उन्होंने जल के अंदर रहते हुए पानी भी नहीं पिए, और केवल एक समय की बात थी कि सौबरी मुनि ने क्या देखा कि दो मछली दोनों आपस में आते हुए संग करते हुए जब उन्होंने देखा, तो यहां पर सौबरी मुनि के हृदय में भी इच्छा जाग गई। तो क्या बताते, जात स्प्रियो नृप विप्र कन्या एक याचते। तो जैसे ही उन्होंने यह देखा दो मछली को संग करते हुए, तो उनके हृदय में भी इच्छा हो गई कि मैं भी विवाह करूं। और ऐसे सोचकर सौभ्र मुनि सीधे उस जलाशय से बाहर निकलकर वो सीधे जाते हैं। वहां पर एक राजा द्रिप उस राजा मंदादा के पास जाकर वो अपने प्रस्ताव को रखते हैं। कहते हैं कि मुझे आपकी पुत्री से विवाह करना है। तो राजा मंदादा देखा कि ऋषि आए हैं। अब ऋषि आकर वो कह रहे कि विवाह करना है, और इनकी अवस्था भी देखिए ऐसी है कि ये पानी के अंदर 10,000 वर्ष तक रहने के कारण इनके शरीर के जितने भी मांस थे सब मच्छी ने खा लिया था, केवल हड्डियां दिख रहे थे। तो यहाँ पर राजा मंदादा सोचने लगे कि ऐसी अवस्था में अब मैं अपनी कौन सी कन्या को दूं, तो ना बोल दूंगा तो श्राप लग जाएगा। तो इन्होंने कहा कि मेरे 50 कन्या है, जो हाँ बोले कि उनसे विवाह करो। तो ये भी बड़े ट्रिकी थे। तो उन्होंने कहा कि सो अपि गृहतम ब्राह्मण कन्याम कन्या स्वयंवरे, अगर स्वयं मेरी कन्या अगर राजी होती है तो उनसे विवाह करिए। तो सौभ्र मुनि समझ गए कि यहां पर राजा मंदादा के मन के अंदर क्या गड़बड़ चल रहा है। तो उन्होंने अपने शरीर को पुनः अपनी योग शक्ति से पुनः यौवन कर दिया। और जब उनका शरीर पूरा यौवन हो गया और जब 50 कन्या उनको देखने के लिए आई, तो एक दो नहीं पूरे 50 ने हाँ बोल दिया। और सौभ्र मुनि ने एक ही साथ में, देखिए माया का क्या प्रभाव है, एक ही साथ में हाफ सेंचुरी। और इस तरह उन्होंने सबके साथ उन्होंने विवाह किया, अपने आप को 50 में विस्तार करते हुए। और 50 कन्या के साथ वो विहार करने लगे, और उन्होंने एक अपना नया नगरी बनाया जो कि राजा मंदादा से भी बढ़कर था। और राजा मंदादा सोचने लगा कि वाह, मुझे तो 50 कन्या के प्रति टेंशन था लेकिन एक ही साथ खत्म हो गया, और वो भी बढ़िया राज्य के साथ। और यहां पर सौभ्र मुनि ने उन सारे कन्याओं के साथ विवाह कर अनेक ऐसे हर एक कन्या के साथ उन्होंने 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। ऐसे वर्णन आता है कि उनके 5,000 पूरे फैमिली ज्वाइंट मेंबर शुरू, इतने फैमिली मेंबर्स हो गए 5,000। और 5,000 इतने उनके परिवार के सदस्य होकर एक दिन उन्होंने क्या देखा, अब हो क्या रहा था कि सारे पत्नियां आपस में झगड़ा करने लगी। अब यहां पर सौभ्र मुनि जो थे वो परेशान हो गए। तो वो तो कृष्ण है जो कि अनंत गोपी को एक साथ रख सकते हैं, लेकिन कृष्ण का अगर कोई थोड़ा भी नकल करेगा तो परेशान हो जाएगा। तो वैसे यहां पर सौभ्र मुनि ने 50 को संतुष्ट करने का प्रयास किया मगर विफल हो गए। और ऐसे परेशान होकर वो एक दिन जंगल में एकांत में बैठकर अहो इमं पश्यते मैं विनाशम, अरे मेरी क्या अवस्था हो गई, मैं पूरी तरह विनाश हो गया। तपस्या न सच्चरित वृतस्य, वो कहने लगे मेरी क्या तपस्या थी, भयंकर तपस्या थी, लेकिन अंतर जले वारी चरा प्रसंगात, केवल जल के भीतर मैंने किसी मछली को देखकर, केवल इस प्रकार ऐसी अवस्था हो गई। तो कहते हैं ब्रह्मचिरम दृतम यत, मैं अपने ब्रह्म ज्ञान के स्तर से गिर पड़ा। और फिर सौभ्र मुनि सोचते हैं कि मेरे जीवन का जो वास्तविक जो मूल लक्ष्य में से खो गया। फिर सौवर मुनि पछताते हुए फिर वो वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण करते हैं, और सौवर मुनि वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण करते उनकी सारी जितनी भी पत्नियां वो भी वानप्रस्थ आश्रम को लेते हैं। और फिर सौवर मुनि जंगल में जाकर भक्ति योग को अपनाते हुए उन्होंने अपने जीवन को सफल किया। तो सौवर मुनि का जीवन की सफलता तब पूरी हुई जब उन्होंने अपने जीवन में भक्ति योग को अपनाया। अब यहां पर हम देखेंगे कि किस प्रकार देवयानी ने, जो कि जयाति महाराज स्वयं, जिन्होंने हजारों वर्ष तक विषय भोग में रत रहने के बाद उन्हें ऐसी साक्षात्कार प्रकट हुआ, जिस साक्षात्कार को उन्होंने जब देवयानी को जब समझाया तो देवयानी भी उनकी बात से सहमत हो गई, और देवयानी समझ गए कि वास्तविक ये जो जगत जो है वास्तविक दुखालय है। तो वैसे जब भगवान के भक्तों के मुख से जब हम कुछ सुनते हैं, भगवान के यशोगान को सुनते हैं, तब व्यक्ति अपने जीवन में साक्षात्कार को प्राप्त करता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में जहां पर राजा रहुगण को जड़ भरत समझाते हैं, बिना महत्पाद रजो अभिषेकम, जब तक व्यक्ति एक शुद्ध भक्त के चरण के धूली के द्वारा जब अभिषेक नहीं होता उसका, तब तक वो अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। तो इस प्रकार भगवान के भक्तों के चरण धूली का महत्व बताते हुए ये समझाते हैं कि एक ही मार्ग है, और वो है उनके भक्त के द्वारा जो यशोगान जो निकलता है, उस यशोगान को अगर कोई सुनता है तो उनका चित्त शुद्ध होता है। इसी बात को बताते हुए श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में वर्णन करते हैं कि सब उत्तम श्लोक महन मुखत अच्युत भवात पदाम्भोज सुत कनालीला। जहां पर चौथे स्कंद में जहां पर वर्णन आता है कि जब चार कुमार आए थे पृथु महाराज के पास, तब उस समय पृथु महाराज ये कहने लगे कि ये मेरा अहो भाग्य है कि आप जैसे शुद्ध भक्त यहां पर प्रवेश किए। अब शुद्ध भक्त के द्वारा कोई कुछ कहता है, जब भक्त कुछ कहता है तो क्या होता है, तो कहते हैं सब उत्तम श्लोक महन मुखत अच्युत, उनके मुख से क्या निकलता है, तो कहते हैं सुधा कनालील, उनके मुख से वो सैफ्रून कलर का मिट्टी तो डस्ट पार्टिकल ये उनके मुख से निकलता है। और वो क्या, क्योंकि भगवान के भक्त निरंतर उनका चित्त भगवान के चरण कमल पर रहने के कारण उनकी जो शब्द है वो भगवान के चरण और तुलसी को स्पर्श कर कर आने के कारण उनके शब्द में ऐसी शक्ति रहती है कि वो शब्द जब कोई सुनता है तो उनका हृदय पूरी तरह पूरे जितने भी कलमश है उसे वो धुल जाता है और उनका हृदय इस प्रकार चमचमाने लगता है। जब वो भगवान के भक्त के मुख से जब भगवान के यशोगान को सुनता है, इसलिए वास्तविक रजो अभिषेकम इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये नहीं कि बस केवल चरण को ही पकड़ कर रखना है और अभिषेक करना है, केवल ये अर्थ नहीं है। वास्तविक अर्थ क्या है कि एक भक्त जब कुछ कहते हैं तो उसे व्यक्ति को बड़े ध्यान से सुनकर और उस शब्द को अपने हृदय में धारण करना है, यही वास्तविक में रजो अभिषेकम, इसी से व्यक्ति अपने चित्त को शुद्ध कर सकता है। और इसी प्रकार ययाति महाराज के मुख से जो शब्द निकला उस शब्द को देवनी ने अपने जीवन में अपने हृदय को धो दिया केवल ययाति महाराज के शब्द ध्वनि के द्वारा। इसलिए इसको कहते हैं ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन। ये जो शब्द ध्वनि जो है दिव्य है, इस दिव्य शब्द ध्वनि के द्वारा व्यक्ति अपने अनर्थ को नाश कर सकता है। तो वैसे यहां पर देवयानी जिन्होंने अंततः गत्वा ययाति महाराज के द्वारा इस प्रकार यशोगान को सुनकर उन्होंने अपने जीवन को सफल किया। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे श्रोपाल की
एप्पल वाला एग्जांपल बताया था।
हाँ,
जो छुपाने जा रहा था उसको मिलता नहीं था,
पहला बंद कर।
हाँ, तो मैंने ना